یہ اپنا انوبھو سناتے ہیں کہاں تک ہم پہنچے. اس کو پورنا کہا جاتا ہے کہ ہم کرماتیت اوستھا میں کہاں تک پہنچے, کرم کرتے اندریا بھوگ سے پرے کی اسٹیج میں کہاں تک پہنچی. مانا بابا کی یاد میں کہاں تک رہتے ہیں اور کہاں تک خوشی ہے. تم جانتے ہو کہ وہ ہمارا بابا بھی ہے, ساجن بھی ہے, ہم بچے بھی ہیں, اس کی سجنیاں بھی ہیں. وہ ساجن ہمارا بہت سنگار کر رہے ہیں, دیویوں سے سنگار کر رہے ہیں, گیان رتنوں سے سنگار کر رہے ہیں, تو کتنی خوشی رہنی چاہیے. یہ تم بچوں کا ڈبل پیئر ہے, اس لیے بابا بھی ڈبل اوم شانتی کہتے ہیں. کیونکہ ایک تو ہے روحانی باپ, تم بندو بندو روح ہو نا, تو روحوں کا باپ بھی ہے اور دوسرا جسمانی باپ ہے. تو تم کو جیسے کہ ڈبل انجن ملی ہوئی, وہ سپریم اور وہ سیکنڈ نمبر. سپریم پرم پتا پرماتما برہما دوارا پڑھاتے ہیں, تو برہما ہو گیا سیکنڈ نمبر میں اور سپریم ہو گیا سپرمیسی والا. تو برہما بھی پڑھاتے ہیں. یہ بھی بچے سمجھتے ہیں کہ انہیں جتنا رحم دل باپ کوئی گایا ہوا نہیں ہے. ابھی ہم کو پتا پڑا ہے کہ باپ آ کر کے بچوں کو بے حد کی بادشاہی دیتے ہیں. بے حد کا باپ ہے نا, بے حد مانا 500 کروڑ. جو بھی منشی ماتر ہیں, بے حد کی بادشاہی بے حد کے باپ دوارا ہی ملتی ہے. یہ بات بچوں کو بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ یاد کی یاترا ہے, یاد کرتے کرتے شانتی دھام سکھ دھام کو پہنچنا ہے. وہ بھکتی مار کے میرے منا کھڑے تو تھوڑا سا میں چل کر کے بند ہو جاتے, اور یہ میرا تو چلتا ہی چلتا رہتا ہے. جب سے باپ آیا ہے تب سے یہ میرا شروع ہوا اور چلتا ہی چلا رہا ہے. میلا کہو یدھ کہو, یہ یدھ چلتی رہے گی جب تک باپ ہے. یہ ہے وناشی پڑھائی, وکاروں پر جیت پانے کی پڑھائی ہے. تو وکاروں سے تمہاری یدھ بھی چلتی ہے اور ایک باپ ہی پڑھاتے ہیں. کیونکہ ایک باپ ہی نراکاری نرویکاری نرہنکاری ہے اور سدا کے لیے ہے, الپکال کے لیے نہیں ہے. ایسے نہیں آج ہے کل نہیں ہے. اس لیے وہ اویناشی باپ آ کر کے اویناشی پڑھائی پڑھاتے ہیں. تم جانتے ہو کہ ہم سسر گھر جا رہے ہیں, برہما کا ہے پیئر گھر اور وشنو کا ہے سسر گھر. ابھی دیکھو پیئر گھر بہت قریب ہے, और ससुर घर बहुत साहूकार है, जो गरीब है ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, भिखारी दिखाते हैं, जो भी देवताएं हैं उनको दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती, और ब्रह्मा को मनुष्यों को दाढ़ी मूछ दिखाई जाती, इसलिए क्योंकि विकार की निशानी है ना, जब तक ये विकार है तब तक समझो गरीब है। ससुर घर में तो बहुत साहूकारी है, वहां विकारों की बात ही नहीं। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से बैकुंठ के मालिक बन रहे हैं, ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, तो ऊंचते ऊंच बैकुंठ की नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो फिर बच्चों को खुशी क्यों नहीं रहनी चाहिए? घर में बैठे भी बाप को याद कर सकते हो, और याद करते करते बहुत प्योर और मीठा बनना है। कोई को भी मनसा से वाचा से कर्मणा से दुख नहीं देना है। ये अभिमान में आने से ही खिटपिट होती है, ये अभिमान में आने से कोई ना कोई दुष्ट संकल्प चलाए लेते हैं, मुख से दुख देने वाली वाचा निकल पड़ती है, कर्मेंद्र जो से दुख देने लग पड़ते हैं, और सर्विस को भी धोखा आ जाता है। जब ऐसी एक्ट करते हैं तो डिस सर्विस हो जाती है, जबकि बाप आए हैं तो ये तो सर्विस का बहुत बड़ा चांस है, तुम बहुत ऊंची सर्विस कर सकते हो, कोई को भी बाप का वर्षा दे सकते हो, दिलवा सकते हो। बाप को आधा कल्प से याद किया है और अभी वो मिला है, बड़ी शिक्षित से पढ़ाते हैं, याद करते हैं, मिलते हैं, और जिस्मानी बाप का प्यार तो मानो कि मार ही मारे, बाप का प्यार तो सच्चा है, वो तो शादी कराते हैं कि बच्चे पैदा होंगे, बुढ़ापे में हमारी परवरिश करेंगे, हमारी धन संपत्ति के मालिक बनेंगे, हमारी धन संपत्ति पीढ़ियों दर पीढ़ियों सुरक्षित बनी रही। बाप तो कोई आस नहीं करते, वो बाप तो गिराते ही रहते हैं, सबसे जास्ती गिरावट होती है काम महाशत्रु, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, शादी बर्बादी है। तुम बच्चों को तो शादी करनी ही नहीं, मृत्यु का बल अंतिम घड़ी पर है तो हम शादी करें ही क्यों, इसलिए पवित्र बनना है और खुशी में बहुत रहना है। जिनको धन होता है वो खुशी में बहुत रहते हैं, तुम तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी मुसाफिरी मूल वतन और सुखधाम की तरफ है, पहले मूल वतन जावेंगे फिर सुखधाम में जावेंगे। तो मूल वतन में जाने से तुम्हारी मौलिक स्टेज बननी चाहिए, कौन सी है मूल अवस्था, बिंदु रूप स्टेज, बिंदु बन जाना चाहिए, जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना मूल वतन की ओर दौड़ी तीखी पहनेंगे, और उतना ही सुखधाम में जाएंगे। तो तुम्हारा विलायक स्वर्ग है, वो तो विलायक में जाते हैं, समझते हैं वहां बहुत सुख होगा। अब मौत तो वहां भी आती है, हॉस्पिटल तो वहां भी है, दुख दर्द तो वहां भी है, लेकिन बाप तुम्हें जिस बेला तुम्हें भेजते हैं वहां कोई प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा। और उनको तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वो तो पैसे ले देकर भी पासपोर्ट बनवा लेते। यहां कौन सा पासपोर्ट है? यहां भी पासपोर्ट है पवित्रता का। जो जो पवित्रता का पासपोर्ट लेंगे उनको पवित्र बनने के कारण स्वर्ग में भेजा जाएगा। पासपोर्ट नहीं होगा तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो तुम पवित्र रहते हो, अभी से प्रैक्टिस करते हो, याद उनको तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तुम पढ़ते हो तो अपना सौभाग्य बनाते हो, तो तुमको पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ये बात तुम भूल जाते हो क्या? क्या भूल जाते हो कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है और दुनिया को पढ़ाने वाले है मनुष्य गुरु है। दुनिया भी पढ़ाइया डॉगली पढ़ाइया है और भगवान गॉडली पढ़ाई पढ़ाते। तो जितना याद करेंगे उतना बंधन कट जाएंगे। सबसे जास्ती कौन याद कर सकते हैं? औरों के मुकाबले सबसे जास्ती याद में कौन रह सकती है? सबसे जास्ती याद में रह सकती है बाबेलियन। या उनकी याद का बैलेंस बहुत बढ़ता है। जितना जास्ती याद करेंगे उनके बंधन भी करते जा रहे हैं। लेकिन चतुराई चाहिए। छोटा बच्चा कहेगा हम तो फिल्म देखने जा रहे हैं, माँ बाप छुट्टी नहीं दे रहे हैं, रोएगा कि मैं तो जाऊंगा। अच्छा जाओ, चले जाओ, छुट्टी दे देंगे। तुम्हारा तो एक गीत भी बना हुआ है कि छुट्टी दो तो हम जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप वशीकरण मंत्र दे रहे हैं राजयोग से, और सुदर्शन चक्रधारी बनने पर तुम अपने आप को ही राज्य रंग दे देते। बाप श्रीमत देते हैं, ये श्रीमती ही बाप की मदद है, दूसरी कोई मदद अलग से नहीं देते हैं। ऐसे नहीं कि आशीर्वाद करो बाबा हम पास हो जा रहे हैं, नहीं। यहां कौन सा आशीर्वाद है? याद ही आशीर्वाद। पढ़ाई में टीचर से कृपा आशीर्वाद मांगना ये तो भूल है। स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं तो क्या टीचर आशीर्वाद करेगा, कृपा करेगा? यहां भी ऐसे, यहां तो बाप पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, पढ़ना तुम्हारा काम है, बाप तो पढ़ाते ही है सबको एक जैसा। और ये ज्ञान भी सेकंड का है। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विघन विनाश होंगे, मुझे याद करो उसको याद करो है? कहते हैं तो कोई मुख से कहते होंगे। बाप कहते हैं तो कहने के लिए कोई मुख होगा ना, कौन से मुख से कहते हैं कि मुझे याद करो। अरे संसार सठ में कौन से मुख से कहते हैं? ब्रह्मा के मुख से कहते थे, ब्रह्मा के मुख से कहते थे कि मुझे याद करो। तो मुर्गियों में तो बोला है ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, इनका चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। पतित होने वालों के फिर मंत्र थोड़े बनेंगे, ब्रह्मा की मंत्र बनते हैं क्या, मूर्तियां बनती हैं क्या, पूजा होती है क्या? ब्रह्मा को तो देवता भी नहीं कहेंगे, देवताओं की पूजा होती है तो फिर किसे याद करो। यहाँ शब्द है दे दिया है, बाप कहते हैं। ब्रह्मा का जो रूप है वो कोई बाप का रूप नहीं है, उन्होंने तो बच्चों को जन्म दिया, ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण जन्म मिला बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को पालना मिली, बड़े प्यार से पालना दी। इतना सहन दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। तो मां की पालना मिली, मां से जन्म मिला, बाकी बाप नहीं कहेंगे, इसलिए उनका नाम ही क्या है, बड़े बड़ी मां, दुनिया की बड़े से बड़ी मां। इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तर्क पुरुष का है, इसलिए चार्ज में ओमराजु रखा हुआ। ये पुरुष तक छूट जाएगा तो ये आत्मा कोई माता में प्रवेश करेगी और जगदम्बा के रूप में स्वर्ग का गेट खोल लेगी, निमित्त बनेगी। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, कहते हैं कौन से मुख से कहते हैं? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से। और मुझे याद करो तो किसे याद करें? सत सरसठ की मैं भूला गया तो सुनने वाले किसको याद करें?
ब्रह्मा
को याद कर। ब्रह्मा को तो याद करने के लिए मना कर दिया, चित्र भी रखने के लिए मना कर दिया। बाप कहते हैं मना, ये कि आज की बात बताई, लेकिन वो तो किसी को पता ही नहीं, वो किसी को पता नहीं है। तो जिस बाप को याद करे, कहने वाला बाप है, वो तो ज्योति बिंदु है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो इशारा दे दिया कि अभी बाप का पार्ट अभी भी गुप्त है, आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाला है, सिर्फ मुझे याद करो और कोई को याद न करो। मुझे याद करेंगे तो विकल्प विनाश होंगे, जैसे को याद करेंगे वैसे स्टेज बनी। तो बाप बाप के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो निराकार स्टेज पर प्रत्यक्ष होता है। जो भी धर्म पिता है, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, शंकराचार्य हो, वो सब निराकारी स्टेज वाले, उनका चेहरा देखने से ही लगता है जैसे कि उनकी आत्मा इस सृष्टि में है ही नहीं, ऊंचे धाम की रहने वाली है। निराकारी स्टेज में होने के कारण उनको बीज कहा जाता है, अपने अपने धर्म के बाप है, लेकिन वो तो सिर्फ बाप है, उन बापों का भी कोई बाप है। तो कहते हैं मुझे याद करो, मनमना भव का मंत्र देते हैं, हम तो याद करते हैं, हम कोई मंत्र नहीं जपते हैं, बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं। शंकराचार्य जैसे एक को जगाया तो तुम्हारा नाम बाला हो जाए, किसको जगाया? शंकराचार्य को नहीं, शंकराचार्य जैसे जो शंकराचार्य हुए हैं उन जैसे किसी एक को जगाया माना कहां की तरफ इशारा दिया है। दुनिया के शंकराचार्यों को जगाने की बात नहीं है, जैसे दुनिया की शंकराचार्य मठ पत्थर सब जमा करके बैठ जाते हैं अपनी पूजा करवाते हैं शिव हम बन के बैठ जाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े मठ पंथ जमा करके बैठे हुए उनमें से किसी एक को भी जगाया है तो तुम्हारा नाम वाला हो जाए कि बाप। ब्रह्मा कुमार ने तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ने तो शंकराचार्य को भी जगाई दिया। बाबा अगर छोटी कुमारी होती तो इतना ज्ञान होता और फट से जाकर के समझाती। इस समय का तो शंकराचार्य बादशाह है, उनको अगर जीत लिया तो जैसे प्रजा को जीत लिया। ऐसे ऐसे ख्यालात करते ही रहो, मल्ल युद्ध होती है तो अंदर में ख्यालात चलती रहती है कि कैसे कहां से उंगली लगावे और वो जग जावे। विनाश का समय जब आएगा तो उस समय तुम्हारी रिजल्ट निकली तुमने जो भी पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ की रिजल्ट आने लगेगी। तुम्हारी मंजिल अभी दूर है, ये ह्यूमन रेस है, अभी नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, हम तो इस दुनिया में भी नहीं रहना चाहते और इस शरीर में भी नहीं रहना चाहते। ऐसे ऐसे वैराग्य की बातें अपने से करते रहो। अच्छा बच्चों को बाप बच्चों को समझाते हैं कि यहां पर जब बच्चों को याद में बिठाते हैं तो इस बात को समझते ये बैठे बैठे क्या कर रहे थे। बात आवे देखे ये क्या कर रहे हैं, न हाथ में माला है न मुख में कुछ राम राम जपते हैं, ऐसे ही बैठे हुए। उनकी बुद्धि में कुछ आएगा नहीं कि ये क्या करते हैं। बच्चे ही समझते हैं कि सियाही की यात्रा से मुक्ति धाम में जा रहे जाए पहुंचेंगे। बाप को एक एक युक्ति बताते हैं और नई नई युक्तियां बताते हैं, नई दुनिया के लिए नई युक्ति। बच्चे जानते हैं कि बाप की याद की यात्रा से हम स्वर्ग में जाए पहुंचेंगे, जिससे जो भी पाप हुए हैं वो सब याद की यात्रा से मिट जाएंगे। एवर हेल्दी सदैव निरोगी काया बननी है सदैव बने जन्म जन्मांतर की निरोगी काया बननी है इस पढ़ाई से, ऐसे नहीं अगले जन्म में बनेगी। निरोगी काया और निरोगी राज्य प्राप्त करते हो इसके लिए बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने अपने सेंटर्स पर भी ये पुरुषार्थ करते हैं क्या कि हमारी काया भी निरोगी बने और जो राज्य है वो भी निरोगी बने, कोई विघ्न बाधा ना आने पाए। बाप से तो कोई भी चीज सहज मिलती है ना, बाप को तो बच्चों पर लव होता है, ये बेहद का बाप है ही बेहद सुख देने वाला, इससे जास्ती सुख और कोई धर्म पिता देता नहीं है। और धर्म पिताएं उनके धर्म के फॉलोअर्स जो सुख पाते हैं उनका आधा आधा होता है, तो सृष्टि पर जो सुख पाते हैं आधा सुख और आधा समय दुख पाते हैं। और ये बाप से जो तुमको वर्षा मिलता है वो पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख मिलता है, तो तुम तो फायदे में रहते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा को याद करते करते शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में पहुंचे, भक्ति की भेंट में ये कितना सहज है। बच्चे जानते हैं कि स्वराज की स्थापना तो होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कहीं की राज्य की स्थापना है, स्वराज्य की स्थापना, स्व माने आत्मा माने रूहानी राज्य की स्थापना होनी है, रूहानी बापी ये स्थापना कराते हैं और उसके लिए फिर विनाश भी होना है। आत्मिक राज्य की स्थापना होगी तो विनाश क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि आत्मा बनने वाले सिर्फ 9 लाख ही निकलते हैं और बाकी सब बाकी में कुछ न कुछ देवान रह जाता है। 9 लाख में भी 4.5 लाख अपनी पावर से आत्मिक स्थिति नहीं धारण कर पाते, वो कोई में प्रवेश करते हैं तब आत्मा बनते और बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। और तुम 4.5 लाख बच्चे ऐसे हो जो अपने पुरुषार्थ से स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, पूरे ही आत्मा बन जाते हो, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा। तो तुम्हारे द्वारा ये स्वराज की स्थापना होती है और जब ये स्वराज की स्थापना होती है तो देह अभिमानियों का विनाश भी होना जरूरी है। तुम 4.5 लाख के अलावा सबके शरीर छूट जाते हैं, वो सब है देह अभिमानी और तुम बनते हो आत्माभिमानी। बच्चों को अंदर में खुशी रहती, बाप को याद करने से खुशी तो होती है ना, बाप तो सुख का सागर है, सुख के सागर को याद करेंगे तो खुशी क्यों नहीं होगी, जैसे को याद करेंगे वैसी स्टेज बनेगी। दुखी आदमी को देख करके रोते हुए लोगों को देख करके खुद भी रोना आ जाता है, दुख आ जाता है। तो बच्चों को ये एक ही सब्जेक्ट है कि बाप को याद करो, और कोई खास सब्जेक्ट नहीं देते हैं। सयाने बच्चे जो होते हैं उनको कमाई का बहुत होना रहता है, बल दिन रात अपना धंधा धोरी करते हैं, परंतु उस कमाई में और इस कमाई में तो बहुत फर्क है। इसमें भी रात दिन तुम बाप को याद करते हो, लेकिन तुम्हारी तो 21 जन्मों की कमाई होती है और उनकी कमाई तो 1 जन्म की होती है, वो भी की हुई कमाई चोर ले जाए, आग जला दे, राजा ले जाए, कुछ पता नहीं, कितना फर्क है। तो पाई पैसे के कमाई में ज्यादा समय देना ये तो ठीक नहीं, बाप की याद में जास्ती ध्यान देना चाहिए। बाप तो बच्चों की बुद्धि का ताला खोलते हैं, बच्चे सन्मुख बैठे हैं तो निश्चय है कि हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम बाप दादा के पास बैठ करके नारी के पात्र की वर्षा लेते और कोई मनुष्य इन बातों को जानती नहीं। ये एक ही पढ़ाई है रूहानी बाप की और कहीं भी रूहानी बाप पढ़ाई नहीं सकते। कोई रूहानी पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं सकता है। ये बुद्धि से काम लेना है कि रूहानी पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है। इस दुनिया में सार है जिस्मानी। जो भी आत्माएं हैं वो सब जिस्म के बंधन में आने वाली है तो सब जिस्मानी पढ़ाई ही पढ़ाती। एक ही रूह है जो कभी जिस्म के बंधन में नहीं आती तो वो आकर के रूहानी पढ़ाई पढ़ाती। तो रूहानी पढ़ाई पढ़ा करके तुम अपना रूहानी राज्य लेते। इसको कहते हैं सच्चा स्वराज्य। इसका राज्य स्व का राज्य आत्मा का राज्य। वो गांधी जी ने तो आवाज लगाई हमें स्वराज्य लेना है राम राज्य लेना है। तो राम राज्य आया क्या? स्वराज्य आया कि और ही परतंत्र हो गए और ही विदेशियों के चंबे में फंसते चले जा रहे। सच्चा स्वराज्य तो बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। इसमें बुझना नहीं चाहिए। बुद्धि से काम लेना कोई भी संशय हो तो पूछना चाहिए क्या? और कोई सत्संगों में ऐसे गुरु नहीं कहेंगे कि कोई संशय हो तो सभा में बैठ करके पूछो। बाप तो कहते हैं कोई संशय आता है तो पूछ लेना चाहिए। मुझने की बात नहीं है। यूं तो ये नॉलेज ऐसी है कि आप ही सबको समझ में आ जाती है। पूछने करने की भी दरकार नहीं रहती। एक तो बुद्धि का योग बाप के पास लगा रहना चाहिए। बाप की ओर बुद्धि का योग होगा तो कुछ पूछने करने की भी दरकार नहीं लगेगी। तुम्हारा बुद्धियों को जिन्न में मुआफिक होना चाहिए। जिन्न की कहानी बात बताते हैं ना। जिन्न कहता था कि हमको काम दो नहीं तो हम खा लेंगे। तो उसको काम दिया कि सीढ़ी पर ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, यही तुम्हारा काम है। तो अपने काम में लग गया। ऊपर जाना नीचे आना ऊपर जाना नीचे आना। अगर काम न दिया तो क्या करेगा? तो खा जाएगा। बात काम की है कौन है? जित प्लस ना, दोनों शब्दों को मिला के बनता है जिन्न। जित ना जो जीता न जा सके। कौन है ऐसा संसार में जो जीता न जा सके? तुमने कहा माया रावण। माया रावण को जीत लिया जाता है। कौन जीत लेता है? राम है वो रावण को जीत लेता है। तो जिन्नात कौन हुआ फिर? जो कोई से न जीता जा सके।
जो
शिव भावन गुरु जिन्नाथ है उसको काम मिलेगा, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, वो तो नीचे उतरता ही नहीं, शिवाओं का भी नीचे उतरता है क्या है? वो तो संघ के रंग में नहीं आएगा तो नीचे कैसे उतरेगा? तो कौन नीचे उतरता है? रामकृष्ण की आत्माएं जब पुरुषार्थ करती है, चाहे रामकृष्ण की आत्माएं हो चाहे कोई बच्चे हो, संघ के रंग में आते हैं तो नीचे उतरते हैं और बाप को याद करते हैं तो ऊंची चीज पे चढ़ते हैं। ऐसे नीचे ऊपर उतरने वाली आत्माओं में राम वाली आत्मा है उसको खास काम मिला हुआ है। क्या? ऊपर चलो, नीचे क्यों उतर, नीचे क्यों उतरो, ऊपर ही क्यों नहीं चढ़ते चले जाओ? जिन्ना कहो तो ऊपर ही चढ़ते चले जाओ,
ऊपर नहीं
चले। इसलिए जो राम पाप है उसको प्रजापिता भी कहा जाता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, तो पिता बच्चों के बिना वापस नहीं जा सकता। बच्चे जो नीचे स्टेज में पड़े हुए हैं उन बच्चों को भी नीचे से ऊपर ले जाता है, तो बच्चों के संग में आना पड़े, संग के रंग में आता है, उनके संग खाता है, उनके संग रहता है, तो अन्न दोष और संग दोष राम की आत्मा को भी लगेगा या नहीं लगेगा?
लगेगा।
संग दोष लगेगा तो अवस्था नीचे आएगी, फिर बाप को याद करेगा तो अवस्था ऊंची जाएगी। तो ये काम मिला हुआ है, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, अगर ऐसा न करे तो माया नहीं उसे खा जाएगी। माया वो राम रावण खुद ही बन जाता है। क्या कलयुग के अंत में राम क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। रावण बन करके सबको खा जाए, सारी दुनिया को हप करके बैठ जाए, कोई को सुख नहीं लेने देगा। क्या कंस क्या बन जाता है? सतयुग में कष्ट बन जाता है और कलयुग के अंत में कंस बन जाता है। जब सतो प्रधान है तो सात्विक स्टेज, तमो प्रधान है तो तामसी स्टेज बन जाती है। तो वे बाप भी कहते हैं कि हमको याद नहीं करेंगे तो तुमको माया काल खा जाएंगे। जास्ती कोई मेहनत नहीं देता हूं, उसी में बैठ जाता है कि ये दुनिया खत्म होनी है, इसमें दिल लगा करके क्या करेंगे? तो फिर पुरानी दुनिया से ममत मिटता जाएगा। अभी बाबा तुमको देखते हैं, तुम बाबा को देखते हो, बाबा की बुद्धि में है कि अब हम तो घर जा रहे हैं बच्चों के साथ, तुम बच्चे फिर राजधानी में आ गए, तुमको भी ये बातें बुद्धि में रखनी है। थोड़ा माया बिगड़ डालती है परंतु सावधान रहना चाहिए, ऊंची से ऊंची भगवान आने वाला है तो जरूर पद भी ऊंचाई देवेंगे। सिर्फ याद की यात्रा में है ना, इसमें बच्चे मुझते क्यों है, जरा भी इसमें मुझने की दरकार नहीं। ये भी बाप ने समझाया है, तुम्हारे से कुछ भी नहीं लेता हूं मैं, तो तुमको देने आया हूं, कोई ट्यूशन लेता हूं क्या, कोई पढ़ाई का उजुरा लेता हूं क्या, तुमको सुखधाम का मालिक बनाने आया हूं। अब ईश्वर को देते हैं ये सोचना भी पाप है, क्यों क्यों पाप है? देता है बाबा को कुछ, अगर ये सोचे कि हमने बाबा को दिया बाबा ऐसे यज्ञ में लगा देंगे यज्ञ का खर्चा चलेगा, तो ये सोचना पाप क्यों है? पाप इसलिए है कि बाबा लेकर के क्या करेंगे, तुम जो देते हो वो अपने लिए देते हो या बाबा के लिए देते हो? बाबा तो हिंदी है, परम धाम से कुछ लाता भी नहीं है और लेकर के भी कुछ जाएगा नहीं। तुम देते हो, तुम ही किस जनों के लिए पाते हो? जो करेंगे अपने लिए करेंगे, बाबा के लिए तो कुछ लेने करने की बात है ही। ईश्वर तो दाता है, कोई के भी अंदर में है कि हम देते हैं तो इतना कहने पर उसकी ताकत ही कम हो जाती है। क्या अगर दूसरे को कहा कि हमने यज्ञ में इतना दिया तो देने वालों ने जो दिया उस दिए हुए दान की ताकत कम हो जाएगी, वो यज्ञ में उतना काम नहीं आएगा जितना काम आना चाहिए। क्योंकि देह अभिमान में आकर के दूसरों को बताते हैं कि हमने इतना दिया तो ये भी पाप बन जाता है। ये भी जानते हो शिव बाबा को राजा ही आदि कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा तो तुम बच्चों को आकर के राजा लेते, खुद राजा ही नहीं लेते। बाप तो तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर के आता है, राजा बनकर के आता है क्या? जैसे माँ बाप होते हैं अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जन्म देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितनी परवरिश करते हैं सारा जीवन, मकान बना के देते हैं, फिर सारे जीवन की कमाई बच्चों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो माँ बाप बच्चों के दास दासी हुए या राजा हुए? कितने बढ़िया दासदासी हुए, कुछ लेते भी नहीं और दे करके ही जाते। तो ये तो बापों का बात है, ये तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है, ये भी जानते हो। बाबा तो आए हैं बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तो भी कल्प कल्प आते हैं, ये नई बात नहीं है, कल की बात है। कल हम मालिक थे, फिर चक्कर खाया, अभी हम बेगर बन गए, फिर मालिक बनने वाले, अभी नाटक पूरा हो गया। बाप आए हैं राजू सिखाने, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुमको अटक डाले, तुम्हारे रास्ते में रोड़ा भरकर रह जाए और तुम आगे न बढ़ सको। बाप की याद में कोई अटक कैसे डाल सकता है, इसमें विघ्न कैसे डाल सकते हैं जो तुम रुक जाओ? माना माया भी तुमको रोक नहीं सकती, फिर हम रुक क्यों जाते हैं? क्यों रुक जाते हैं? हिम्मत नहीं करते हैं तो बाप से मदद नहीं मिलती। लौकिक बाप को तो याद करने में विघ्न पड़ेगा क्या? कोई विघ्न नहीं पड़ता। ये भी निश्चय है कि हमको बेहद के बाप की मत पर चलना है। बेहद का बाप आया हुआ है तो हद के बाप की हम परवाह भी क्यों करें?